ॐ शांति, ओम शांति। आज 15 अगस्त 2026 है और आज भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस है। 79 साल पहले 1947 15 अगस्त को हमारा भारत देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ और हम पिछले 79 सालों से यह स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो आज ये 80वां स्वतंत्रता दिवस है। अंग्रेजों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, रावण से तो मुक्ति मिली नहीं हा? क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? रावण। उस समय भी जब अंग्रेजों की हुकूमत थी और भारत के अंदर स्वतंत्रता के नारे लगे थे, तो उस समय अंग्रेजों के पुतले जलाए थे। अंग्रेज भाग चले जाओ देश से, चले जाओ, बहुत कुछ हुआ था। और उस समय महात्मा गांधी ने एक ट्रस्ट बनाया था जिसमें भारतवासी अपना धन उसमें डाला ताकि इस धन से हम भारत को स्वतंत्र बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं भारत तो अंग्रेजों से तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन रावण से स्वतंत्र नहीं हुआ है, वो राम राज्य नहीं आया है। तो रावण से कैसे स्वतंत्र होना है वो बाबा ने हमें सिखाया। हर मुरली में बाबा हमको सावधान करते रहते हैं, ये रावण तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है, तुम्हें इनको जीतना है। और जीतने के लिए एक 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 सिर को नहीं काटना है। जैसे दिखाते हैं कि रावण कैसे मरा, जब राम ने उनके नाभि में मारा, क्योंकि उनकी सारी शक्ति नाभि में, अमृत धारा नाभि में बह रही थी। तो एक एक सिर को काटने से रावण नहीं मरा, वो सिर वापस आ जाता था, लेकिन जब उसकी नाभि में मारा तब रावण की मृत्यु हुई। तो बाबा कहते हैं सारे विकारों की जड़ है देह अभिमान। जब तक देह अभिमान नहीं मरा है तब तक रावण नहीं मरेगा। इसीलिए बाबा हमें हर मुरली में यही कहते हैं, देह सह देह के सब धर्मों को भूलो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मुझे याद करो। बस यही एक ऐसा नारा है जिससे ही रावण खत्म होगा और हमारा स्वराज्य हमें मिलेगा। तो हर साल रावण को तो जलाते हैं, लेकिन रावण अभी तक मरा नहीं है। तो देखो बाबा ने कैसे रावण को खत्म करने लिए क्या किया। ब्रह्मा बाबा को कहा कि अपना तन मन धन सब माताओं बहनों के आगे समर्पित करो, ट्रस्ट बनाया। और कैसे 8 बहनों को अपना विल कर दिया, सब कुछ अपना स्वाहा कर दिया और इस यज्ञ की स्थापना हुई। और उसको देख, बाबा को देख अनेक समर्पित हुए, उन्होंने भी अपना जो कुछ था वो समर्पित किया और 14 साल की बट्टी चली। तो अब बाबा कहते हैं फॉलो फादर, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, जो हमारे आदि रत्नों ने किया और कैसे ये बट्टी बनी, अब बाबा को फॉलो करो। क्योंकि तुम नई दुनिया ला रहे हो, वो तो अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने लिए ही ये सब किया, अब हमें तो रावण से स्वतंत्रता लेनी है। रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसीलिए हम सब मिल करके भारत को रावण से स्वतंत्र कराने लिए ये हम सब ने ये यज्ञ रचा है। तो आज की बाबा की मुरली इसी पर है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 15/8/2026 है। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो, तब क्या होगा, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। उस समय भी यही सोचा ना कि अंग्रेज चले जाएंगे, भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं दुश्मन तो रावण बैठा है भारत में, तो इसीलिए कैसे सबको रावण से छुटकारा देना है उसकी बाबा युक्ति बताते हैं। तो मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है किस बात में? उत्तर है, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, माताओं के नाम पर, 8 बहनों के नाम पर विल कर दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी, चल अचल प्रॉपर्टी जो भी बाबा की थी सब माताओं बहनों के आगे विल कर दिया और खुद न्यारे हो गए। उसमें मम्मा लीडर थी, दादी प्रकाशमणि भी थी, उसमें दीदी भी थी, ये 8 बहनें थी जो मुख्य मुख्य थी। तो जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। बाबा ये नहीं कहते कि सब दे दो, लेकिन रखो अपने पास, पर ट्रस्टी बनकर रहो। और ट्रस्टी बनकर रहना का मतलब क्या है, कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना है। उस समय भी महात्मा गांधी ने क्या किया, जो भी अंग्रेजों की दी हुई चीजें थी, सामान था, विदेशी सामान, उन सब की होलिका जला दी। जिनके पास कुछ भी विदेशी कपड़े हैं, विदेशी जो कुछ है सब जला डालो, सिर्फ भारत का ही पहनो, स्वतंत्रता तो सच्ची तो तब कहेंगे। तो बाबा भी कहते हैं ये सब बाबा का है, ट्रस्टी बन जाओ तो कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना है। भारत खास और आम दुनिया को माया से स्वतंत्र बनाने लिए ही खर्चा करना है, पाप आत्माओं को नहीं देना है उल्टा सुल्टा खर्चा कर। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्री मत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कि कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। बाबा ने तो कहा, लेकिन फिर बाबा देखते हैं कि कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासी हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहां से आए, कब आए, फिर वापिस जाने की राह कैसे भूले। इस गीत में आता है कि हम कैसे इस राह को भूल गए। तो हम कहां से आए, कब आए, फिर वापिस जाने की राह कैसे भूले, ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए। समझा दो ये ड्रामा, कैसे हम सब ये भूले। बाबा ने कल पहले आकर के हमको स्मृति दिलाई थी, हमें जगाया था, फिर हम कैसे भूल गए। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा कानों में हमको समझा दीजिए, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ चले गए, कैसे भटक गए। बाबा ने हमें स्वराज्य दिया, स्वराज्य अधिकारी बनाया, फिर क्या हो गया, कैसे सब हमसे छीन लिया गया, कैसे हम भटक गए, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना, तो बूंद मांगते हैं भगवान से, बस एक बूंद ही दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अब बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर के यहाँ दुखी हुए, ये राज कानों में सुनाओ। बच्चे बाबा को कहते होगा इस गीत में, ये राज कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, फिर और क्या क्या, किस किस का सागर है, शांति का भी सागर है, सुख का भी सागर है, और संपत्ति का भी सागर है। कितना माला माल बाबा हमें बना देते, तो संपत्ति का भी सागर है। अभी बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझते हैं, आदि से कहाँ से आए, वास्तव में आदि कहाँ से होती है, परम धाम से ना, वहां से हमें सृष्टि मंच पर आए, तो आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ जो हम रास्ता भूल दुखी हुए, फिर अब बाप को कहते हैं, बच्चे बाप को कहते हैं बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाएं। तो बाप ही बैठ बतलाते हैं, तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, फिर अंत में क्या हुआ, ये आदि मध्य अंत का रास अब सब बुद्धि में बैठा है, बैठा है ना, आदि मध्य अंत का राज सारा बुद्धि में बैठा है। ये ड्रामा है ना, ये मनुष्यों को जरूर जानना है, ड्रामा को मनुष्यों को जरूर जानना है। क्यों जरूरी है जानना है इस ड्रामा को, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। अभी एक्टर होकर के उसके जो जिस ड्रामा में एक्टिंग कर रहा है उसका पता ही नहीं हो, तो वो एक्टर किस बात का, कहाँ हुआ एक्टर, क्योंकि एक्टर्स हैं, जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं, यहाँ टॉकी धाम में मूल वतन सूक्ष्म वतन, फिर ये है स्थूल वतन, फिर मूल वतन से आत्माएं आती है टॉकी धाम में। हम सब यहाँ कहाँ से आए, मूल वतन से आए यहाँ टॉकी धाम में, आवाज की दुनिया में, शरीर धारण कर पाठ बजाने, आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। अब ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते, कैसे हम शांति धाम में थे, फिर वहां से इस दुनिया में आए टॉकी धाम में, आवाज की दुनिया में, फिर कैसे पाठ बजाया, और अभी वापस जाने का समय है। बाबा कहते हैं ये कोई भी नहीं जानते, ये ज्ञान सागर बाप ने ही आकर के समझाया है, अभी समझा रहे हैं बाबा, समझा रहे हैं, अंत तक समझाते रहेंगे, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा ही जाता है पारलौकिक परम पिता परमात्मा को, मनुष्य को नहीं कह सकते हैं ज्ञान सागर। ये महिमा सिर्फ एक बाप की ही गाई हुई है, जिसको और कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो उस ज्ञान सागर बाप को, और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर बाबा ने विनश्यंती नहीं कहा, लेकिन बाबा ने कौन सा शब्द कहा जो विनश्यंती अपना ही विनाश करेंगे। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी, यूरोपवासी पश्चिमी दुनिया, वो कैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि है, कैसे अपना ही वो विनाश करेंगे। तो विपरीत बुद्धि यूरोपवासी, अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है। क्या कहा है अपने साथ, कैसे लगाया है, क्या कहा है, अब माम एकम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं बोधी हूँ, ये सब देह के धर्म है। उस समय भी महात्मा गांधी ने यही कहा था, भूल जाओ अपना धर्म, देह का धर्म, हम सब भारतवासी है, हम सबको मिल करके अंग्रेजों से छुटकारा पाना है, तो ये धर्मों को भूलो। तो उस समय तो सब आ गए ना, मुसलमान भी आ गए, भले वो मुसलमानों का देश अलग बना, लेकिन मुसलमान तो गए नहीं, और ये हिंदू आ गए वहां से, लेकिन मुसलमान तो यही थे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी बन गया, प्रजातंत्र बन गया, तो इसीलिए उन्होंने भी महात्मा गांधी को साथ दिया। तो बाबा कहते मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धी हूँ, ये सब देह के धर्म हैं, आत्मा तो आत्मा ही है। तो बाप समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं इस देह को भी भूलो, ये सब के लिए बाप का पैगाम है, सबके लिए बाप का पैगाम है, कौन सा, देश है देह के सब धर्मों को भूलो मुझे याद करो, ये पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। देश सहित देह के जो संबंध है सबको भूलो, मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स का बाप एक ही है। ये ब्रह्मा भी कहेगा, ब्रह्मा भी क्या कहेगा, हम आत्मा है, ब्रह्मा बाबा ने भी कहा मैं आत्मा हूँ, तो सब भाई भाई हो गए, ब्रह्मा भी वास्तव में आत्मा है तो भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं, सब काम चिता पर चढ़ चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तब ही फिर और धर्म शुरू होते हैं, आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो, सारा कल्प पतित नहीं बनते हो, आधा कल्प ही पतित बनते हो, बाकी तो पहला आधा कल्प तो पवित्र हो, पावन हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं, कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 का बड़ा महत्व है, तो 21 कुल का उद्धार करे कुमारी, कुमारी का मान है, तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार करते हो, केवल भारत का नहीं, आम तो सारी दुनिया का और खास भारत का उद्धार कर रहे हो, तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार भी कुमारी ठहरे, शिव बाबा के बच्चे माना सब कुमार, आत्मा रूप में सब कुमार। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, ये तुम बच्चे, तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो, फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो, आओ और क्या करो, हमको रावण राज्य से लिबरेट करो और हमारा गाइड बन हमको वापस घर ले चलो, हमारे दुख हरो सुख दो, अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले चलेंगे। बाप जानते हैं सभी आत्माएं इस समय पतित है, सब आत्माएं पतित है। हाँ बाबा जानते हैं ये, इसलिए शरीर भी पतित है, क्योंकि आत्मा ही पतित है तो शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट, फिर फ्यूचर होगा, जो पास्ट में हुआ है विनाश हुआ है, अभी फिर प्रेजेंट में होना है, फिर फ्यूचर होगा, फिर हर कल्प कल्प ये सब होता है। तो पास्ट तो बाबा कहते हैं पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा, आदि मध्य अंत फिर आदि, आदि मध्य अंत हुआ फिर अंत के बाद फिर आदि, सतयुग आदि कलयुग अंत, सतयुग आदि कलयुग अंत, फिर फ्यूचर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर सतयुग होगा फ्यूचर। ये तो सहज है ना। अच्छा बीच में क्या हुआ, फ्यूचर तो सतयुग होगा और अभी प्रेजेंट में तो कलयुग अंत है, तो बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे, हम पावन देवता थे फिर पावन से पतित कैसे बने। अभी तुम समझते हो कैसे बने, तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो, तो बाप समझाते हैं कैसे बने पतित। जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो, फिर जब तुमको भविष्य देवता, अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ, पतित बन गए, अभी तुमको भविष्य में भविष्य के लिए देवता बनाने आया हूँ। इसमें डिफिकल्टी की तो कोई बात ही नहीं है, ज्ञान इतना सहज है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बाप कहते हैं तुमको इस विषय सागर से पार ले जाता हूँ। गाते भी है ना भक्ति मार्ग में, ये गाते हैं, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु, हे प्रभु नैया मेरी पार लगाओ। सभी पुकारते हैं एक बाप को, हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खिवैया बागबान भी कहते हैं, अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं। तो बागबान आकर के फूलों का बगीचा बनाते हैं, अभी तो कांटों के जंगल में पड़े हैं। हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो, देवताएं फूल है ना, तो सतयुग फूलों का बगीचा है, क्योंकि सब देवताएं हैं और देवताएं फूल है। अभी सब है कांटे, एक दो को दुख ही देते रहते हैं, देवता कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। अगर किसी को दुख दिया तो बाबा कहेंगे ये तो कांटा हो गया, ये तो कांटा हो गया, क्योंकि कांटा तो दुख देते हैं, देवता कभी किसको दुख नहीं देते। वहां तो सुख ही सुख है, वो तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो, प्रैक्टिकल सुन रहे हो कैसे वहाँ सुख ही सुख है। कहते हैं ना बाबा हम कहाँ से भूले, इतना सुख दिया था फिर कैसे गिरे, कहाँ से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले। आश्चर्य खाते हैं ना, इतना सुख बाबा ने दिया था, हम स्वर्ग के मालिक थे, सारे विश्व के मालिक थे, इतने धनवान थे, इतने पवित्र थे, फिर बाबा कहते हैं वहां तो सुख था फिर कैसे गिरे, कैसे सब भूले। हाँ तो बाबा कहते हैं वो तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो, वो तो गाते हैं ना कैसे हमारा देश ऐसा था अभी क्या हो गया है, तो तुम तो यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा हम कहाँ से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले, सतयुग त्रेता में ये नहीं जानते, वहाँ ये नहीं जानते कि हम कोई ऐसे गिरेंगे और फिर सब ये राजाई हमारी जाएगी। क्यों नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए? कब हुए दुखी? जब रावण राज्य शुरू हुआ। भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है। हर साल जलाते रहेंगे तो कब रावण का जलना खत्म हो जाएगा? जब सचमुच रावण राज्य खत्म होगा ना, तभी तो रावण का जलना भी खत्म हो जाएगा। तो जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है रावण का, तब तक रावण को जलाते रहेंगे। फिर सतयुग में थोड़ी हर वर्ष जलाएंगे। ये है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु क्या होता है, मरता तो है नहीं, हर वर्ष और ही बड़ा बड़ा होता जा रहा है। हाँ, वहाँ भी रामलीला मैदान में जलाते हैं ना, दिल्ली में जलाते कि नहीं? हाँ, कितने जाते हैं देखने के लिए। यहाँ भी जलाते हैं, माउंट आबू में भी। पहले तो यहाँ छोटा सा एक स्थान था, उसको रावण घाट कहते, वहाँ जलाते थे छोटा सा रावण। फिर धीरे धीरे बड़ा करते गए, बड़ा करते गए, तो उस घाट पर कैसे जलाए? नकी लेक के पास ही एक घाट है, अभी तो पोलो ग्राउंड में जलाते रावण के साथ साथ। फिर मेघनाथ भी, फिर कुंभकर्ण भी, तीनों ही जलाते यहाँ पर भी। और कितने जाते देखने के लिए, बड़े खुश होते हैं, वहाँ रावण जल गया। लेकिन अंदर का रावण तो जला ही नहीं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया, हमारे लिए तो रावण मर गया ना, हम थोड़ी अभी जलाएंगे रावण को। हमारे लिए तो जैसे रावण मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। पांच भूतों का सिर काटा जाता है, पांच भूतों का सिर काटा जाता है। पहले पहले तो काम के सिर को काटते हो। सबसे पहले तो बाबा आत्मा का ज्ञान देते हैं, फिर बाबा कहते सब भाई भाई हो, ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो, तो काम विकार का जो सिर है वो कट जाता है। तो पहले पहले काम के सिर को काटते हो। काम ही महाशत्रु है। बाप कहते हैं इन पांच भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। सारे विश्व पर तुम जीत पाएंगे। कैसे? जब इन पांच भूतों को जीतेंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं कि हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा, हो खिवैया, रहम दिल बाबा आओ। आत्माएं पुकारती है। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। आप पुकारते हो मैं कल्प कल्प आता हूँ। कैसे आता हूँ ये कोई नहीं जानते। भगवान आएगा किस रूप में आएगा कोई नहीं जानते। हाँ, तो ये कोई नहीं जानते कैसे आता हूँ। गीता में भी है, भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया है। परंतु भगवान कौन है, कब आया, ये किसको पता नहीं है। गीता को तो खंडन कर दिया, तो कृष्ण का नाम डाल दिया, तो समझ से कृष्ण आएगा, उसी का ही अवतार आएगा, और वही फिर पतित को पावन बनाएगा, वही गीता सुनाएगा। तो खंडन कर दिया गीता को। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो द्वापर में श्री कृष्ण ने आकर क्या किया? मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस है। सतयुग में होते हैं राइटियस। तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, तुम ही अब विकारी पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो, और ये एक संगम युग का जन्म। तो ये बाप ही बतलाते हैं कि तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि मध्य अंत का रास बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, कितना भी बाबा समझाते लेकिन सब एक रस नहीं समझेंगे, नंबर वार ही समझते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आकर के किंगडम स्थापन करता हूँ, राजाई स्थापन करता हूँ, क्योंकि कलयुग अंत में तो अभी प्रजा का प्रजा पर राज्य है, प्रजा ही अपने राजा को चुनती है और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बना या कितने सारे मिनिस्टर्स बने। तो मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ, राजाई स्थापन करता हूँ। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सतयुग में जा नहीं सकते। जब तक सर्वगुण संपन्न नहीं बनेंगे तब तक सतयुग में जा नहीं सकते, बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में अब यहाँ बन रहे हैं फिर भविष्य में राज्य करेंगे, तो बन रहे हैं फिर भविष्य में करेंगे, उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा, उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे जरूर, कौन विनाश देखना चाहता है, हाथ उठाओ सब। सच्ची हाँ, जो समझते नहीं विनाश से ये देखना नहीं है, उसके पहले ही जाना है, वो हाथ उठाए। अच्छा वो भी है हाँ, देखना नहीं है विनाश। तो बाबा कहते विनाश भी देखेंगे जरूर, जा नहीं सकते हैं पहले, जब तक बाबा न जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं। तो विनाश भी देखेंगे जरूर, चलो नहीं देखना है, शरीर छोड़ेंगे पर फिर जन्म तो लेना पड़ेगा ना, फिर तो देखेंगे जरूर ना, तो देखना जरूर है। तो बाबा कहते विनाश भी देखेंगे जरूर, तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे, तुमको थोड़ी पता पड़ता है आगे क्या होगा, कैसे होगा विनाश, कैसे होगा, पूछते हैं। बाबा कहते वेट एंड सी, तुम प्रैक्टिकल में देखोगे आगे क्या होगा, पता थोड़ी था पहले, जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा, चिंता की क्या बात है, जो कल्प पहले भी हुआ है ना तो वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है, टोटल बताया जाता है कि स्थापना और विनाश होना है, विनाश कैसे होगा वो तो सब होगा, वो तो जब होगा तब देखेंगे, इसीलिए पूछो नहीं। कई बहुत पूछते हैं कृष्ण कैसे आएगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अरे भाई बाबा कहते हैं तुम देखोगे, तुम पूछो नहीं, वो तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है ना, आगे चल प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है, कई समझ रहे, मैं ध्यान में जाके देखूं कैसे विनाश होगा, कैसे सतयुग आएगा, वो मैं ध्यान में देखूं। बाबा कहते हैं ज्यादा ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है, फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। उस समय तो बहुत करते थे, भट्टी में ध्यान में जाती थी, वह ध्यान में जाकर के घंटों घंटों बस डांस ही करती रहती थी सतयुग में, जैसे सतयुग में पहुंच गई और डांस करते थे। फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं, न ज्ञान न योग। तो जो साक्षात्कार में जाते थे उनको न ज्ञान न योग कुछ भी नहीं, बस साक्षात्कार करते थे, दोनों से वंचित हो जाते, ज्ञान और योग से वंचित हो जाते। हमने भी वो देखा है कैसे साकार बाबा जब बॉम्बे आए थे तो हमने देखा, तो गुरुवार के दिन भोग लगता था तो बाबा के पास ही वो संदेशी बैठती थी और ध्यान में जाती थी भोग लगाने के लिए। और उस समय तो जो संदेशी होती थी ना वो एक्शन करती थी, ऐसे ऐसे करती थी, जैसे ट्रे खोल रही है, फिर बाबा को खिला रही है और फिर डांस करने लगती थी, बैठे बैठे, सब बैठे बैठे। अब बाबा देखते थे ये बच्ची गई ट्रांस में, गई तो गई है स्वर्ग में, स्वर्ग में डांस कर रही है, तो फिर बाबा की मुरली चल पड़ती थी। वो योग वो ध्यान में है, साक्षात्कार कर रही है, आंखें बंद है और क्या क्या एक्शन कर रही है, और बाबा की मुरली चल पड़ती थी फिर आगे, क्योंकि बाबा थोड़ी छोड़ के जाएंगे, बाबा तो बैठेंगे। तो बाबा कहते देखो अब बाबा की मुरली चल रही है, ये थोड़ी सुन रही है, बाबा ऐसे कहते ये थोड़ी सुन रही है, देखो ये तो ध्यान में है, तुम बच्चे तो देखो अलर्ट हो, तुम बाबा की मुरली सुन रहे हो, अब ये अपना टाइम वेस्ट कर रही है। यहाँ तक बाबा कह देते थे, क्योंकि खाली डांस ही करती थी स्वर्ग में जाकर के। तो देखो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है, फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं, न ज्ञान न योग दोनों से वंचित हो जाते हैं। बाबा की मुरली तो उस समय वो सुनेगी नहीं। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं है, है क्या किसी को इच्छा ध्यान में जाने की, देखने की? बाबा कहते जरूरत ही नहीं है। हाँ अभी तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना विनाश, और क्या देखना है, उस समय तो प्रैक्टिकल में नहीं था, तो वो 14 साल भट्टी में थे। फिर जब 1947 में स्वतंत्रता मिली और कितना घमसान हुआ, कैसे सिविल वॉर हो गया, खून की नदियां बही, क्या नहीं हुआ, तो पता तो चलता ही था, यज्ञ में थे वो, तो जब उनको पता तो चलता था तो बाबा से पूछते थे बाबा यही विनाश है क्या? बाबा कहते थे नहीं बच्चे, ये तो केवल ट्रेलर है, सच्चा विनाश तो आना है। जो सिविल वॉर भारत में गाई हुई है, रक्त की नदियां, वो तो होगी, वो तो भविष्य में। फिर उसके बाद 1945 में एटम बॉम्ब गिराया जापान पर, पूरा का पूरा शहर नागासाकी हिरोशिमा खत्म हो गए, एकदम खत्म। तो बाबा से पूछा बाबा यही विनाश है क्योंकि बॉम्ब गिराया? तो बाबा ने कहा ये भी ट्रेलर है। फिर एक बहुत जबरदस्त भूकंप आया था, सब 14 सालों के अंदर, और वो भूकंप कहाँ आया था? क्वेटा में, क्वेटा जो बलूचिस्तान में है। इतना जबरदस्त भूकंप आया था, पूरा का पूरा क्वेटा शहर, शहर का शहर खत्म हो गया था। हमारे हमारी जो नानी दादी बताते थे कि कैसे पूरा शहर क्वेटा का खत्म हो गया, सब खत्म। तो बाबा से पूछा बाबा ये विनाश है? बाबा कहते नहीं ये भी ट्रेलर है। तो सिविल वॉर भी हुई और एटॉमिक वॉर भी हुई और फिर प्राकृतिक आपदाएं भी हुई, लेकिन बाबा ने कहा वो ट्रेलर है। तो अभी सच्चा जब आएगा तब वो तो फिर बाबा कहते देखना है। तो बाबा कहते हैं ध्यान में अभी जाने की कोई दरकार नहीं है, ये तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहां जाते हो सूक्ष्म वतन में, और क्या आप देखते हो सूक्ष्म वतन में? देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। सूक्ष्म वतन में देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है, देवताएं भी आते हैं और ब्राह्मण भी जाते हैं। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी में जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है तुमको ससुर घर में कैसे चलना है, सबसे प्यार से चलना है। माँ बाप अपने बच्ची को समझाते हैं झगड़ा नहीं करना है। ये भी हूबहू ऐसे है, बाबा यहाँ हमें समझाते हैं, वहां तो झगड़ा करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ भी झगड़ा नहीं करना है। यहाँ भी हूबहू ऐसे है, बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर में जाते हो, वहाँ है महान वैष्णव, उस ससुर घर में सतयुग में महान वैष्णव, उन जैसा वैष्णव सृष्टि पर कोई होते नहीं, देवताओं जैसे वैष्णव दुनिया में कोई नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़ी जाते हैं, सच्चे जो वैष्णव है वो देवताएं हैं, वो विकार में नहीं जाते, पर यहाँ जो अपने आप को वैष्णव कहलाते हैं वो तो विकारी होते ना। तो सच्चे वैष्णव देवताएं विकार में थोड़ी जाते हैं, विकार है हिंसा, कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है, जानते हो वहाँ बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, पहले पहनते होंगे ना फटा हुआ कपड़ा, एकदम चित्ती लगाया हुआ कपड़ा पहनते थे, हल्दी लगाते, अभी भी करते होंगे, तो एकदम कपड़े तो पीले ही हो जाते थे इतना वो लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं जिसको वनवा कहते हैं, अब तुम्हारे पास भी अभी क्या है, हम भी तो सब वनवा में है ना, तुम्हारे पास भी अभी क्या है, कुछ भी नहीं, ये तो ठिक्कर भीतर है, जो कुछ है भी तुम्हारे पास ये तो ठिक्कर भीतर है, यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं है। ठिक्कर भीतर ये सिंधी शब्द है, ठिक्कर माना मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, मिट्टी का मटका होता है, जब उसको वो टूट जाता है तो टुकड़े टुकड़े जो होते ना वो उसको बोलते ठिक्कर, और जो पत्थर होते और पत्थर के टुकड़े टुकड़े जो होते हैं वो भीतर, तो ठिक्कर हो गए मिट्टी के टुकड़े और भीतर हो गए पत्थर के टुकड़े, तो ठिक्कर भीतर ही तो है ये सब कलयुगी दुनिया। तो बाबा कहते हैं ठिक्कर भीतर है, यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं है, परंतु कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहना है। अब ग्रस्त व्यवहार में रहना है तो जितने भी रस्म रिवाज ग्रस्त में है वो तो निभाने पड़ते हैं, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी बाबा कहते हैं भल पहनो, बाबा मना नहीं करते हैं ना, कई बार बाबा से पूछते थे बाबा शादी में जाना होता है तो वहाँ जेवर नहीं पहनेंगे तो डिसर्विस होती है, तो बाबा कहते भले पहनो ना, मना थोड़ी है, शादी में जाना है तो भले पहनो, मना नहीं है, नहीं तो कहेंगे ये तो विधवा है, अब शादीशुदा है पति साथ में है और वो सफेद साड़ी पहन करके अगर जाएगी किसी के विवाह में बिना गहने पहने तो लोग क्या कहेंगे, हाँ ये तो विधवा है, पति के आगे वो तो पति तो कभी ऐसे नहीं उनको जाने मानेंगे कि ये मेरी पत्नी सफेद साड़ी में ऐसे जाए, तो इसलिए बाबा कहते हैं मना नहीं है, भले पहनो, नहीं तो कहेंगे विधवा है जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा, तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम भी नहीं करना है, ये तो ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम होगा, पहले तो बहुत समझते थे ऐसे, हाँ क्योंकि सफेद साड़ी पहन के जाते थे तो कहते थे यहाँ से हट जाओ, क्योंकि क्या है सिंध में जो भी विधवा होती थी ना वो तो सफेद साड़ी पहनती थी, ऐसे बाल खुला, पति मर गया बाल खुला और एकदम छाती पीटना, सियापा करना, रोना पीटना, परंतु अगर वो बाहर निकलती थी तो जो पुरुष होते थे वो दुकान के आगे समझो वो गई तो पुरुष कहते थे अभी ये अपशगुन आया हट जाओ यहाँ से, तो वो विधवा स्त्री को अपने नजदीक भी नहीं आने देते थे, और क्या करते थे वो जाने के बाद पानी छिड़कते थे कि ये जो अपशगुन है ये सब खत्म हो जाए, बहुत कुछ होता था। तो बाबा कहते हैं बाबा कर कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, मेन बात तो वही है, जाओ भल कहाँ भी ये मंत्र याद रखो, ये परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं, इतना सारा वैभव होगा, खाने पीने का सामान होगा तो भी मन ललचाए नहीं, मुख में पानी आए नहीं, हाँ भले ड्राई फ्रूट है फ्रूट है वो जो कुछ है वो तो भले खाओ, परंतु वो जो इतना कुछ वैभव होता है क्या, तो बाबा कहते हैं अभी वो भी परीक्षा है आपकी, तो बाबा कहते हैं ये परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं, यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, भले जाओ इसलिए बाबा का डायरेक्शन है भले जाओ, ऐसे नहीं बाबा मना करते कि नहीं जाओ, उनके साथ तो तोड़ निभाना है लौकिक के साथ, परंतु हथ कारडे दिल यारडे, तो समझेंगे ये मजबूत है, जेवर आदि भी पहन शादी पर भल जाओ इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है, सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वैश्या के पास भेज दिया, जैसे दिखाते हैं गुरु ने उसको सन्यासी बन रहा था तो उसको कहा पहले वैश्या के पास जाओ, तो वैश्या के पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया कि डरता तो नहीं है, वैश्या को देख करके कहीं मन वो आकर्षित तो नहीं होता, तो परीक्षा लेता था गुरु, जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है, बाप की याद में रहेंगे तो फिर कर्म इंद्रियों से चंचलता नहीं होगी, बाप को भूले तो कर्म इंद्रियां चंचल होगी, कब होगी चंचल कर्म इंद्रियां? जब बाप को भूले। विश्व के तो मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया है, नाम बदल दिया है। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। जब तक जीते रहेंगे, ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है, एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकार न हो, हाँ कोई भी विकर्म न हो। ये तो असुरों का काम है, विकर्म करना, विकारों में जाना, ये असुरों का काम है। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा, आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार मुंह फेर देती है, हाँ जैसे किसी को थप्पड़ मारो तो उसका मुंह फिर जाता है ना, तो माया भी थप्पड़ मार कर मुंह फेर देती है। तब गाया जाता है, आश्चर्यवश सुनंती कथंती फिर भागंती। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, भक्ति में तो गाया ना, हाँ ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो तुमने तो ये गाया है ना कि हे ईश्वर, हाँ ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। ये सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर, फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं, बाबा भी ये देखते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। शुरू में इस ब्रह्मा ने भी क्या किया, ट्रस्टी हो दिखलाया ना, ट्रस्टी बन गए, सब माताओं को समर्पित किया, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस किसको भी कुछ नहीं दिया। उस समय उनका जो बड़ा बेटा था वो तो बहुत नाराज हुआ, बहुत उसने हंगामा किया कि मेरा, मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे मेरे बाप का हक मिलना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं, ये सब अभी शिव बाबा को दे दिया, शिव बाबा की अमानत है और मैं तो इस एक पाई भी नहीं दे सकता हूँ। तो उस समय ये बहुत कुछ हुआ था। किसको भी कुछ नहीं दिया, ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, ये थोड़ी बाबा ने दिया माना ब्रह्मा बाबा को की पालना नहीं हुई, बाबा की तो पालना हुई। जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया, इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसा किया, बट्टी बन गई। बट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते, दादियां हमारी कैसे बनती होशियार, 14 साल भट्टी में रहे, इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर के सीखे, जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। 1950 में आए तो फिर भी 1950-51 तो यहीं थे, फिर 52 में बाहर निकले, सबसे पहले दिल्ली। तो बाबा कहते समझाने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनी आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस यज्ञ, इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे। विघ्नों से डरना नहीं है, सुना, विघ्नों से डरना नहीं है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, बाप कहते हैं योग बल में रह उनों को समझाओ, योग बल में रह उनों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो, ये भी क्या है, हार जीत की कुश्ती है। वो बल युद्ध होता है ना बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग में समझो एक गिरा, मान लो एक गिरा, फिर वो गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक गिनती करते हैं। अगर वो 10 की गिनती के अंदर वो उठ खड़ा हुआ फिर लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन अगर 10 पूरा हुआ फिर भी उठा नहीं तो हार गया हा? तो देखो बाबा भी क्या कहते हैं, बाबा भी कहते हैं हाँ, ये भी हार जीत की कुश्ती है ना, परंतु बॉक्सिंग माफिक है कुश्ती, बॉक्सिंग माफिक। माया घूसा लगाती है तो फां हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया से कभी हारना नहीं है, पवित्र रहेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है, क्या कमाई है इतनी बड़ी, अगर इसमें पास हुए तो कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। दूसरा, विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है, कुछ भी उल्टे सुलटे कार्य में नहीं लगाना है। आप सबको मालूम हो अभी क्लास के तुरंत बाद बाहर ओम शांति भवन की सीढ़ियों पर हमारा भारत का तिरंगा झंडा लहराया जाएगा और हम सब वहाँ उस तिरंगे झंडे के आगे खड़े होंगे। वरदान, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आवागमन के आह्वान द्वारा, संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अब कौन सा आवागमन है वो बाबा ने बताया। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन, ऊंची स्थिति फिर नीची स्थिति, ये आवागमन है। ऊपर उठे फिर नीचे आ गए, फिर गिरे फिर उठे फिर गिरे, तो ये जो आवागमन है, ये जो चक्र चलता है, बार बार स्मृति फिर विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। स्लोगन, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगना। किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगना। यह व्यक्ति इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पर पवित्र बनो। जैसे आपका आदि स्वरूप पवित्र देवता है, ऐसे यह अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन अति सहज अनुभव करो। पवित्र बनो, योगी बनो, यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। ये महामंत्र ही सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाहर चलेंगे।